एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी जो दिलचस्प किताबों और विचारों की दुनिया में गोता लगाना पसंद करती हूं।
और मैं यहां हूं उन विचारों को और गहराई से समझने, उनके बीच के कनेक्शंस को खोजने और ये देखने के लिए कि ये आज हमारे लिए कैसे मायने रखते हैं।
आज हम बौद्ध धर्म की दुनिया में एक यात्रा पर निकल रहे हैं।
हाँ, और हमारे गाइड हैं डेमियन ग्योन, जिनकी परिचयात्मक पुस्तकें, जैसा आपने बताया, इस विषय को समझने का एक बेहतरीन जरिया है।
बिल्कुल, डेमियन क्यून और बौद्ध धर्म, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आपको क्या लगता है कि ये विषय इतना प्रासंगिक है, इतना जरूरी है?
मुझे लगता है क्योंकि हम सब जीवन में किसी ना किसी तरह की बेचैनी या कह लीजिए असंतोष, मतलब दुख का अनुभव तो करते ही हैं।
हाँ, ये तो है।
और साथ ही हम सब एक गहरे अर्थ की, खुशी की तलाश में भी रहते हैं। तो बौद्ध धर्म हजारों सालों से इसके लिए एक बहुत ही क्या कहते हैं व्यवस्थित और प्रैक्टिकल ढांचा देता आया है।
अच्छा,
और क्यून साहब हमें यही दिखाते हैं कि ये सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, मतलब आज भी ये हमारे सवालों के जवाब ढूंढने में मददगार हो सकता है।
बिल्कुल।
ये सिखाता है कि दुख को कैसे समझें और उससे आगे कैसे बढ़ें।
तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, ये डेमियन क्यून है कौन? मतलब अकादमिक दुनिया में इनका क्या रुतबा है?
डेमियन क्यून, हाँ, वो बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। बहुत सम्मानित विद्वान है, खासकर बौद्ध नैतिकता के फील्ड में।
बौद्ध नैतिकता?
हाँ, वो लंदन यूनिवर्सिटी के गोल्डस्मिथ्स कॉलेज में बौद्ध नैतिकता के प्रोफेसर एमेरिटस रह चुके हैं। उनका काम काफी गहरा है, बहुत ठोस है।
और उनके नजरिए में ऐसी क्या खास बात है? आपने नैतिकता का जिक्र किया, क्या वही उन्हें अलग बनाता है?
हाँ, काफी हद तक। अक्सर क्या होता है कि जो शुरुआती किताबें होती हैं ना बौद्ध धर्म पर, उनमें ध्यान या दर्शन पर ज्यादा फोकस रहता है।
सही बात है।
पर क्यों नैतिकता वाले पहलू को बहुत महत्व देते हैं। और उनकी खूबी यह है कि वो अकादमिक गहराई और आम पाठक की समझ, इनके बीच एक पुल जैसा बनाते हैं।
अच्छा,
वो बौद्ध धर्म को सिर्फ कुछ मान्यताओं या रस्मों रिवाजों का कलेक्शन नहीं मानते, बल्कि एक लॉजिकल, एक सुसंगत सिस्टम की तरह देखते हैं और इंसानी बेहतरी के लिए, मतलब ह्यूमन फ्लॉरिशिंग के लिए, एक गंभीर नैतिक रास्ते की तरह।
अच्छा, मतलब वो इसे किसी रहस्यमयी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक तर्कसंगत और व्यावहारिक जीवन पद्धति के रूप में देखते हैं। ये नजरिया तो मतलब काफी फ्रेश लगता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे सिर्फ मेडिटेशन से जोड़ते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, उनका दृष्टिकोण हमें इसे सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने के एक तरीके के रूप में देखने में मदद करता है।
तो उनकी जो परिचयात्मक किताबें हैं, जैसे बुद्धिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वो क्या पेशकश करती हैं? उनका निचोड़ क्या है?
देखिए, ये किताबें बौद्ध धर्म का एक संक्षिप्त लेकिन हैरतअंगेज तौर पर काफी व्यापक परिचय देती हैं। ये उन लोगों के लिए तो बेहतरीन है जो इस विषय में नए हैं लेकिन सिर्फ ऊपरी जानकारी से आगे जाना चाहते हैं।
और इन किताबों का केंद्रीय विचार, वो एक बड़ा आइडिया क्या है जिसे क्यून सामने रखते हैं?
सबसे अहम विचार मेरे ख्याल से ये है कि बौद्ध धर्म मूल रूप से दुख, जिसे हम सिर्फ पीड़ा नहीं कह सकते, बल्कि जीवन में एक तरह की जो बुनियादी असंतोषजनकता होती है ना,
हाँ, एक बेचैनी सी,
हाँ, उसी सार्वभौमिक मानवीय समस्या को समझने और उसका इलाज करने की एक प्रणाली है।
क्यों इसे लगभग एक चिकित्सीय परंपरा की तरह देखते हैं?
चिकित्सीय परंपरा, ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, मतलब जो समस्या दुख का निदान करती है, उसके कारण बताती है और फिर उसका इलाज यानी रास्ता सुझाती है। अच्छा, तो फिर ये निराशावादी तो बिल्कुल नहीं हुआ, जैसा कुछ लोग मानते हैं?
बिल्कुल नहीं, क्यों इस आम गलतफहमी को एकदम साफ करते हैं। वो इसे एक बेहद आशावादी मार्ग के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि ये ना केवल दुख के अंत की संभावना बताता है, बल्कि उस तक पहुंचने का एक स्पष्ट रास्ता भी दिखाता है। ये कोई पैसिविटी नहीं है, बल्कि एक्टिव एफर्ट और समझ पर जोर देता है। और किताब की संरचना भी बहुत मददगार है। वो तीन रत्नों के इर्द गिर्द बुनी गई है, बुद्ध शिक्षक, धर्म शिक्षा, और संघ समुदाय।
तो ये बुद्ध के जीवन से शुरू होकर सिद्धांतों और फिर प्रैक्टिस तक जाती है?
हाँ बिल्कुल, बुद्ध के जीवन से शुरू होती है, फिर कर्म और पुनर्जन्म जैसे बुनियादी सिद्धांत आते हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण चार आर्य सत्य और अनात्मन, नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट।
अच्छा,
उसके बाद अलग अलग स्कूल्स जैसे थेरवाद, महायान, फिर ध्यान और नैतिकता का अभ्यास, और आखिर में पश्चिम में इसका कैसे प्रसार हुआ, कैसे अडॉप्ट हुआ, उसकी बात करते हैं। फ्लो बहुत लॉजिकल है।
चलिए अब कुछ मुख्य अवधारणाओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बुद्ध के जीवन से ही शुरू करते हैं, सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार जिनके बारे में इतनी कहानियां हैं, क्यों उनके जीवन को कैसे प्रस्तुत करते हैं?
क्यों जो हैं वो ऐतिहासिक सिद्धार्थ और जो किंवदंतियां हैं उनके बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हैं। वो बताते हैं कि बुद्ध का जीवन खुद में एक बहुत शक्तिशाली शिक्षा है।
कैसे?
सोचिए, एक राजकुमार जो हर तरह के सुख और सुरक्षा में पला बड़ा, लेकिन फिर उसने जीवन की असलियतें देखी, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, उन चार दृश्यों के जरिए, और एक शांत तपस्वी को भी देखा,
और इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया, उन्हें सच्चाई की खोज के लिए प्रेरित किया।
हाँ बिल्कुल, इसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहते हैं। उन्होंने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया, ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, कई साल बहुत कठोर तपस्या की।
हाँ वो सुना है।
लेकिन फिर पाया कि शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना भी रास्ता नहीं है। आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्यून रेखांकित करते हैं वो ये है कि बुद्ध कोई ईश्वरीय अवतार नहीं थे।
अच्छा।
वो एक इंसान थे जिन्होंने अपनी कोशिशों से, अपने पुरुषार्थ से मुक्ति का रास्ता खोजा।
और उन्होंने मध्यम मार्ग सिखाया ना, बहुत ज्यादा भोग ना बहुत ज्यादा तपस्या, ये संतुलन, क्या गजब की बात है, आज भी कितना प्रासंगिक लगता है।
बिल्कुल, बुद्ध के जीवन के बाद उनके सिखाए सिद्धांतों में कर्म और पुनर्जन्म बहुत अहम है। क्यून कर्म को कैसे समझाते हैं? क्या ये भाग्य या किस्मत जैसी कोई चीज है?
नहीं, क्यून इसे बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। कर्म कोई बाहरी शक्ति या डेस्टिनी नहीं है, ये नैतिक कार्यकारण का एक सार्वभौमिक, एक नेचुरल नियम है। कर्म का सीधा मतलब है क्रिया या एक्शन।
ठीक है।
और इसमें सबसे ज्यादा महत्व है नियत का, चेतना का।
नियत का महत्व मतलब हमारे इरादे तय करते हैं कि कर्म अच्छा है या बुरा।
हाँ, कुशल यानी अच्छे इरादों से किए गए काम अच्छे नतीजे लाते हैं, और अकुशल यानी बुरे इरादों से किए गए काम दुखद। ये किसी भगवान के इनाम या सजा जैसा नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जैसे बीज बोने पर फल मिलता है। और यही कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र यानी संसार में बांधे रखता है।
अच्छा, तो पुनर्जन्म का चक्र हमारे कर्मों के कारण चलता है, और इसे दुख से भरा क्यों माना जाता है?
क्योंकि ये चक्र चलता है अज्ञान, मतलब चीजों को सही ढंग से ना समझ पाना, और तृष्णा, चीजों को पकड़ने या उनसे दूर भागने की जो तीव्र इच्छा होती है ना।
हाँ हाँ।
बस उसी से। बौद्ध धर्म का अल्टीमेट लक्ष्य है निर्वाण, यानी इस दुख भरे चक्र से मुक्ति, और ये पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी पर जोर देता है।
यहीं पर चार आर्य सत्य आते हैं ना, जो बौद्ध धर्म के एकदम कोर में हैं। आपने कहा था कि उन्हें एक मेडिकल मॉडल की तरह देखते हैं।
हाँ, ये समझने में बहुत मदद करता है। पहला सत्य है दुख का सत्य, दुख। ये सिर्फ शारीरिक दर्द या उदासी नहीं है, बल्कि जीवन में मौजूद हर तरह की जो असंतोषजनकता है ना, वो है।
हर तरह की?
हाँ, जैसे दर्द का दुख, बदलाव का दुख, जैसे अपनी पसंद की चीजों का खो जाना, और यहाँ तक कि सामान्य जीवन की शर्तों से बंधे होने का एक बहुत सटल दुख भी। दूसरा सत्य है दुख के कारण का सत्य, समुदय। इसका कारण है तृष्णा, तन्हा,
वही इच्छा।
हाँ, वो कभी ना खत्म होने वाली प्यास, सुख भोगने की, कुछ बनने की, या नापसंद चीजों से पीछा छुड़ाने की। और इस प्यास की जड़ में है अज्ञान, अविद्या।
तो निदान हो गया, दुख है और उसका कारण हमारी अपनी तृष्णा और अज्ञान है। अब इलाज क्या है?
यही तीसरा और चौथा सत्य आता है। तीसरा है दुख निरोध का सत्य, निरोध। और ये उम्मीद की किरण है, ये बताता है कि दुख का अंत संभव है पूरी तरह से, अगर तृष्णा और अज्ञान को जड़ से मिटा दिया जाए। इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं।
निर्वाण।
और चौथा सत्य है दुख निरोध के मार्ग का सत्य।
मग्या।
ये प्रैक्टिकल नुस्खा है
जी।
जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं।
आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये तो बहुत सुना है।
आठ रास्ते।
क्यों, इसे कैसे समझाते हैं? क्या ये आठ स्टेप्स हैं जिन्हें एक के बाद एक करना है?
नहीं, ये कोई सीक्वेंशियल स्टेप्स नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के आठ पहलू हैं जो एक साथ विकसित होते हैं। क्यों इन्हें तीन मुख्य हिस्सों में बांटते हैं।
अच्छा, कौन कौन से?
पहला है प्रज्ञा, विजडम। इसमें सही समझ, सम्यक दृष्टि और सही इरादा, सम्यक संकल्प शामिल है, मतलब चीजों को वैसे देखना जैसी वे असल में है और सही नीयत रखना।
ठीक है।
दूसरा है शील, एथिकल कंडक्ट। इसमें सही वाणी, सम्यक वाक, सही कर्म, सम्यक कर्म और सही आजीविका, सम्यक आजीविका आते हैं, मतलब मॉरली जीना। और तीसरा है समाधि, मेंटल डिसिप्लिन। इसमें सही प्रयास, सम्यक प्रयास, सही सजगता, सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस और सही एकाग्रता, सम्यक समाधि शामिल है, मतलब मन को ट्रेन करना।
तो ये तीनों प्रज्ञा, शील, समाधि, ये मिलकर रास्ता बनाते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है।
बिल्कुल, क्यों यही जोर देते हैं, सिर्फ ध्यान करना काफी नहीं अगर जीवन नैतिक नहीं है, और सिर्फ नैतिकता पर्याप्त नहीं अगर मन ट्रेंड नहीं है और समझ साफ नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड पाथ है।
आपने पहले कहा था कि बौद्ध धर्म में विविधता है, थेरवाद और महायान, इन दो मुख्य स्कूलों के बारे में क्यों क्या बताते हैं?
हाँ, ये समझना जरूरी है कि बौद्ध धर्म कोई एक मोनोलिथिक चीज नहीं है। क्यों बताते हैं कि थेरवाद, स्थविरों का मार्ग, ज्यादा रूढ़िवादी है, वो मूल पाली ग्रंथों पर ज्यादा जोर देता है।
ठीक।
इसका आदर्श है अरहत बनना, यानी व्यक्तिगत रूप से निर्वाण प्राप्त करना। ये श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में ज्यादा प्रचलित है।
और महायान, महान वाहन, वो कैसे अलग है?
महायान में नए ग्रंथ और दर्शन विकसित हुए। इसका आदर्श है बोधिसत्व, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए काम करे, चाहे उसके लिए अपना निर्वाण भी टालना पड़े। इसमें करुणा पर बहुत जोर है।
करुणा पर?
हाँ, और महायान में शून्यता, एम्प्टीनेस का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे नागार्जुन जैसे दार्शनिकों ने समझाया। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र स्थायी अस्तित्व नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। ये चीन, जापान, तिब्बत, वज्रयान के रूप में ज्यादा फैला।
शून्यता का सिद्धांत, ये तो काफी गहरा लगता है। शायद ये दिखाता है कि हम सब कितने इंटरकनेक्टेड हैं। खैर, इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारने के लिए ध्यान और नैतिकता का अभ्यास कैसे किया जाता है? क्यों क्या बताते हैं?
देखिए, ध्यान सिर्फ मन को शांत करना या खाली करना नहीं है। क्यों दो मुख्य प्रकार बताते हैं, एक है समथ, शांति ध्यान, और दूसरा विपश्यना, अंतर्दृष्टि ध्यान या माइंडफुलनेस।
अच्छा।
समथ का उद्देश्य है एकाग्रता और मानसिक शांति विकसित करना, जैसे सांस पर ध्यान लगाना।
और विपश्यना, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, माइंडफुलनेस।
हाँ, विपश्यना का लक्ष्य है अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल सजग रहना, बिना किसी पसंद नापसंद या जजमेंट के, बस देखना। इसका मकसद है वास्तविकता की प्रकृति को सीधे अनुभव करना, कि सब कुछ अनित्य, दुख की संभावना से युक्त है और स्थाई में अनात से रहित है।
और नैतिकता, शील का क्या स्थान है इसमें, वो पांच नियम?
हाँ, क्यों जोर देते हैं कि ये मार्ग का अभिन्न अंग है। आम लोगों के लिए पंचशील है, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, यौन दुराचार से बचना, झूठ ना बोलना और नशीले पदार्थों से बचना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये ध्यान और प्रज्ञा के विकास के लिए जमीन तैयार करते हैं। नैतिक जीवन के बिना मन को साधना बहुत मुश्किल है।
तो अगर हम क्यून के विश्लेषण से मुख्य संदेशों को समेटें, तो पहला तो यही लगता है कि बौद्ध धर्म का सेंट्रल फोकस दुख और उसके समाधान पर है।
हाँ, बिल्कुल, और ये निराशावादी नहीं बल्कि व्यवहारिक और उम्मीद जगाने वाला है।
दूसरा, कर्म का नियम और नैतिक जिम्मेदारी। हम अपने जीवन के निर्माता काफी हद तक खुद हैं, हमारे इरादे और हमारे काम मायने रखते हैं, ये एक तरह का एम्पावरमेंट है।
सही कहा।
तीसरा, शील, समाधि और प्रज्ञा का वो गहरा इंटरकनेक्शन, ये तीनों मिलकर ही रास्ता पूरा करते हैं।
हाँ।
चौथा, वो अनात्मन, अनात्ता, यानी नो सेल्फ का सिद्धांत, ये समझना कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय मैं नहीं है, ये मुक्ति के लिए जरूरी है। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है समझने में, पर शायद ये हमें चीजों से कम चिपकने में मदद करता है।
हाँ, शायद यही बात है।
पांचवा, बौद्ध धर्म की विविधता और समय के साथ ढलने की उसकी क्षमता। ये कोई पत्थर में लिखी चीज नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो अलग अलग कल्चर्स में ढली है।
और छठा, अनुभव पर जोर देना। बुद्ध ने कहा था, एहे पसिक्को, आओ और स्वयं देखो, किसी बात को मान मत लो, उसे खुद अनुभव करके परखो। ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच लगता है।
बिल्कुल। और क्योंग के लेखन में कुछ ऐसे विचार हैं जो बहुत स्पष्टता से सामने आते हैं, जो याद रह जाते हैं, जैसे मध्यम मार्ग के बारे में उनका कहना।
हाँ, कि रास्ता न तो अत्यधिक भोग में है न अत्यधिक कष्ट में, बल्कि संतुलन में है। ये व्यावहारिकता दिखाता है।
सही। और कर्म पर वो विचार कि प्राणी अपने कर्मों के स्वामी हैं, अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हैं, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी को कितनी गहराई से रेखांकित करता है। कोई बाहरी शक्ति नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं।
हाँ, और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अस्तित्व के तीन लक्षण, सब कुछ अनित्य, अनिच्य है, असंतोषजनक, दुख है और स्थायी स्व अनाथ से रहित है। इन्हें निराशाजनक रूप से नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ सत्य के रूप में देखना।
और निर्वाण के बारे में क्योंग का स्पष्टीकरण भी बहुत मददगार है कि ये कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं बल्कि लोभ, द्वेष और मोह की आग के बुझ जाने की अशर्त अवस्था है। ये निर्वाण के रहस्य को थोड़ा खोलता है, उसे समझने लायक बनाता है।
तो ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत गहरे लगते हैं, लेकिन आम जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या मतलब है? हम इन्हें कैसे उतार सकते हैं?
देखिए, सबसे सीधा तरीका तो आजकल बहुत पॉपुलर भी है, माइंडफुलनेस या विपश्यना ध्यान का अभ्यास।
हाँ,
आजकल की जो तनाव भरी जिंदगी है उसमें कुछ पल रुककर अपनी सांस पर ध्यान देना, अपने शरीर की सेंसेशंस को महसूस करना, अपने विचारों को आते जाते देखना, ये तनाव कम करने, फोकस बढ़ाने और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में वाकई मदद कर सकता है।
हाँ, ये तो है, और नैतिक मार्गदर्शन भी मिलता है ना? पंचशील हमें याद दिलाते हैं कि हमारे एक्शंस का दूसरों पर क्या असर पड़ता है।
बिल्कुल, चाहे घर हो या ऑफिस, ईमानदारी से बात करना, सच्ची वाणी बोलना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने का ध्यान रखना, ये रिश्ते और माहौल दोनों को बेहतर बना सकते हैं।
और दुख के साथ अपने रिश्ते को बदलना, ये भी एक बड़ा फायदा हो सकता है। जब हम समझते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव मतलब दुख, ये तो स्वाभाविक है, तो शायद हम मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति से कर पाते हैं। और जब हम ये पहचानते हैं कि हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी तन्हाई अक्सर दुख का कारण बनती है, तो हमें पता चलता है कि हमें काम कहाँ करना है, बाहर नहीं, अपने अंदर।
सही कहा, और वो अनित्यता का सिद्धांत सब कुछ बदल रहा है। ये समझना हमें बदलाव और नुकसान को स्वीकार करने में मदद कर सकता है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो शायद हम आज के पल की, वर्तमान क्षण की ज्यादा कद्र करना सीख सकते हैं और चीजों और लोगों से बेवजह चिपके रहने से बच सकते हैं।
और करुणा पर जोर, वो बोधिसत्व का आइडिया, ये हमें सिखाता है कि सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में ना सोचें बल्कि दूसरों के दुख को भी समझें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। ये हमें ज्यादा दयालु, ज्यादा पेशेंट और उदार बना सकता है।
तो कुल मिलाकर डेमियन क्यून के काम से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे लिए तो यह है कि बौद्ध धर्म सिर्फ कुछ मान्यताओं या ध्यान की तकनीकों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन पोटेंशियल को पूरी तरह विकसित करने के लिए, मतलब मानवीय उत्कर्ष के लिए, एक संपूर्ण, सुसंगत और आश्चर्यजनक रूप से व्यावहारिक खाका है।
हाँ, बिल्कुल, और मुझे तीन बातें खास तौर पर स्ट्राइक करती हैं।
मतलब हम हालात के शिकार नहीं हैं, हमारे कर्म और हमारी मानसिक स्थिति हमारी खुशी और दुख में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दूसरा, स्पष्टता। हमारी बहुत सी समस्याओं की जड़ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भ्रम, जैसे लालच, गुस्सा, नासमझी में है।
सही।
और तीसरा, संभावना। हर इंसान के अंदर बुद्ध जैसी गहरी समझ, करुणा और शांति यानी निर्वाण पाने की क्षमता मौजूद है। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है।
बिल्कुल, और क्योंकि खूबी यही है कि वो इस गहरे और कभी कभी जटिल लगने वाले विषय को बहुत ही स्पष्ट और सुलभ भाषा में समझाते हैं। उनकी किताबें उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु हैं जो बौद्ध धर्म को सतही तौर पर नहीं बल्कि गंभीरता से समझना चाहते हैं।
बिल्कुल, तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पूरी बातचीत में से बौद्ध धर्म का कौन सा पहलू या शिक्षा उन्हें आज की इस तेज तरार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक या मददगार लगती है? क्या वो माइंडफुलनेस का अभ्यास है, या कर्म और जिम्मेदारी का सिद्धांत, या अनित्यता की समझ, या फिर करुणा का भाव? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।